सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते इधर के पीछे की बैठते हैं कैमरा है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 2 Contents of Gita summarized, text 42-43. Yamimam pushpitam vacham pravadantya vipaschitah vedavadaratah partha nanyadastiti vadinah kamatmanas swargapara janma karma falapradam kriya vishesha bahulam bhogaishwarya gatim prati. Translation prepared by Srila Prabhupada. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. People in general are not very intelligent. And due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the karmakanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotishtoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attachment, unintelligent men are similarly attracted by such heavenly opulences and the sense enjoyment thereof. In the Karmakanda section of the Vedas, it is said, Apama somam amrita abhuma and akshayam havai chatur masya yaknyaha supritam bhavati. In other words, those who perform the 4-month penances become eligible to drink the soma rasa beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have soma rasa, to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandana Kanana, in which there is good opportunity for association with angelic beautiful women and having a profuse supply of somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of the material world. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasa Gaur Bhakta Binda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो कल हमने देखा कि भगवान अर्जुन को किस चेतना में इस भौतिक जगत में अपने जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, वो करने के लिए कह रहे हैं कि उनके फलों से आसक्त हुए बिना जो उनके अनुसंगिक फल हैं, बाय प्रोडक्ट्स, उससे आसक्त हुए बिना आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, कृष्ण प्रेम, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए अपने कार्य करें, ये हमने कल देखा। तो आज इस श्लोक में उन लोगों का वर्णन है जो अपने धर्म का पालन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, किस उद्देश्य से, स्वर्ग जाने के लिए या स्वर्गिक सुख प्राप्त करने के लिए इसी पृथ्वी पर। ये जो चेतना है कि हम शास्त्रों में दिए गए अनुष्ठानों को करेंगे, जिस अनुष्ठानों में अनुसंगिक फल बताया गया है कि ये करने से आपको ये स्वर्ग प्राप्त होगा, आपको ये सुख प्राप्त होगा, आपको ये सुख प्राप्त होगा, उन अनुष्ठानों को हम करेंगे जिससे कि हम वो सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस अंडरस्टैंडिंग को, इस मेंटेलिटी को वो कर्मकांडीय चेतना कहेंगे। तो शास्त्रों में ऐसे लोगों को धीरे 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 आगे बढ़ाने के लिए अनेक अनेक इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको कर्मकांड भाग बोलते हैं शास्त्रों का, जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उपासना करने की विधि विधान है और उन देवी देवताओं की पूजा करने से क्या क्या फल प्राप्त होगा वो सब डिटेल में बताया गया है। किसी को बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो सूर्यदेव की उपासना करे, किस प्रकार से करे, किसी को बहुत सुंदर पत्नी चाहिए तो वो कैसे उमा की उपासना करे या शिव जी की उपासना करे, अगर पति चाहिए तो इस प्रकार से सारे अलग अलग भौतिक सुखों के लिए बहुत डिटेल वर्णन है शास्त्रों में, उस भाग को कहते हैं शास्त्रों के कर्मकांड। तो कंपैरिजन भगवान दे रहे हैं दोनों का। इससे पहले के श्लोकों में कंपैरिजन, इससे पहले के श्लोकों में वर्णन किया उन लोगों का जो अपने नियत कर्मों को करते हैं उसके मिलने वाले अनुसंगिक सुख के लिए नहीं, बल्कि उसके जो उससे जो होने वाली आध्यात्मिक प्रगति है केवल उसको प्राप्त करने के लिए वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर इस श्लोक में उन लोगों का वर्णन है जो इसके विपरीत केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए ये सब वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं। क्लियर, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो वो लोग क्या बताया है, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, शास्त्रों के जो ऐसे पुष्प के समान वाक्य हैं, बड़े ही उनको मधुर लगते हैं वो वाक्य, ये करने से हमको ये मिलेगा, ये करने से हमको ये मिलेगा, है ना। आप देखेंगे कई बार आप कहीं जाएंगे सत्यनारायण कथा ये सब, उसमें श्रुति फल, जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है उसे ये प्राप्त होता है, उसे ये प्राप्त होता है, देखा आपने घरों में इस प्रकार से, और उससे सब लोग बड़े उत्साही होते हैं, सब मंदिर में जाते हैं, देव देवताओं के मंदिर में आप देखिए प्रार्थनाएं, भौतिक सुखों के लिए बहुत प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े तपस्याएं भी करते हैं, वैष्णो देवी चल के जाते हैं, बहुत कठिन कठिन व्रत लेते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, नवरात्रे उसमें बहुत व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, किस उद्देश्य से सब करते हैं, मन्नतें, हाँ, भौतिक सुखों को, ये सब कर्मकांड के अंदर आता है, ये सब भाग जो है वो कर्मकांड। तो उन लोगों के बारे में बताया कि वो लोग सोचते हैं कि शास्त्रों का अर्थ, शास्त्रों का सार यही है बस, इससे ऊपर और कोई नहीं, यही सबसे हाईएस्ट टीचिंग है शास्त्रों की, क्योंकि उनकी श्रद्धा उस प्रकार की है, उनके हृदय की श्रद्धा, उनकी चेतना उस प्रकार की, इसलिए उनको वही सबसे अच्छा लगता है शास्त्रों में, बोलते हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है कोई। अगर वो भक्त को देखेंगे जो भक्त की भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, केवल भगवान को, केवल भगवान को संतुष्ट करना है, किस लिए, क्योंकि हमारा ही कर्तव्य है, दैट्स ऑल, तो उनको बड़ा सुनने में अजीब लगता है, ये क्या मतलब हुआ, इससे क्या फायदा होगा, है ना। तो ऐसे लोग जब हमें देखेंगे कि हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं दो दो घंटा, और तीन तीन चार चार घंटा, और किस लिए कर रहे हैं? बस हमें सब हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। तो उनको बहुत ही अटपटा लगता है, क्या अरे भगवान की पूजा करो, 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, और उनसे मांगो कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो, हमें बहुत अच्छा मिले, खूब हमारा प्लेसमेंट हो जाए, बढ़िया जॉब लग जाए, इसलिए करो। इतना सारा सारा ये सब भक्ति क्या है? वो उनके समय में नहीं आता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, भक्ति और कर्मकांड। बाह्य रूप से क्रियाएं ये दिखेंगी, भक्ति में भी हम कुछ अगरबत्ती घुमाएंगे, कुछ लैंप दिखाएंगे, कुछ भगवान को फूल अर्पित करेंगे। कर्मकांड में भी कृष्णा, शिव, पार्वती, गणेश, वहां पर सबको एक जैसा माना जाता है, ये सब दे देता है। कृष्णा अलग से भगवान है इस प्रकार से समझ नहीं, कृष्ण भगवान है भाई नहीं, सब 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 बराबर है। इसलिए आप जाएंगे ऐसे लोग घर में तो वहां सुपरमार्केट मिलेगा आपको, देखता हूँ सब जो जहां जहां मिल जाए सब लगेंगे उनके घर के अंदर, है ना। हमारे घरों में ऐसा होता है, बहुत सारे मिलेंगे, करेक्ट, कोई भी नाराज नहीं हो जाए, सबको पसंद करना है। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कहीं भी कोई भी बाकी नहीं रह जाए, जिससे जो प्राप्त हो सके उससे वही सही, ठीक है। इस प्रकार की उनकी मेंटेलिटी होती है, और इस प्रकार से वो सोचते हैं कि बस इससे अच्छा हो तो क्या हो सकता है। शास्त्रों का पूजा करने का मतलब यही है, और इससे अधिक और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को बता रहे हैं भगवान वेदवादरता, वो वेदों को सोचते, वेदों को सोचते हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदों का गुह्य अर्थ नहीं जानते हैं, वेदों का वास्तविक उद्देश्य नहीं जानते हैं, है ना। वो केवल उसके ऊपरी, उससे ही आकर्षित होकर के वहीं तक ही सीमित रह जाते हैं। जो उसका वास्तविक अर्थ है धर्म का, मुख्य हेतु, जो मुख्य प्रयोजन है धर्म पालन करने का, वो क्या है? आध्यात्मिक प्रगति। वो उनके समय में नहीं आते, वो सोचते हैं बस हम इसीलिए कर। तो कामात्मान स्वर्ग परा, स्वर्ग जाने की इच्छा, या स्वर्गिक सुख, इस भौतिक जगत में स्वर्गिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, जन्म कर्म फल प्रदान, ऐसे जो अनुष्ठान हैं, वैदिक क्रियाएं हैं, सेक्रीफाइसेस हैं, जिससे कि अच्छे परिवार में जन्म मिलता है और खूब ऐश्वर्य मिलता है, भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होकर के वो लोग ऐसे बहुत ही बड़े बड़े महंगे महंगे अनुष्ठान करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं उसमें। आप देखेंगे सब ये जो अनुष्ठान होते हैं, सुकर्म में बहुत बहुत पैसे खर्च करने में वो लोग, क्योंकि वो बिजनेस है, इतना पैसा खर्च करेंगे बदले में इतना मिलेगा, हमको इतना मिलेगा, इस तरह से उनकी मेंटेलिटी। तो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसा सोचते हैं। फिर आगे बता रहे हैं भगवान 44वें श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि एक, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो जो इस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त होते हैं, आसक्त होते हैं, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते हैं, अपहत चेतसा, इस प्रकार से उनकी जो वास्तविक बुद्धि है, वास्तविक बुद्धि मतलब जो नेचुरल आत्मा की जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जो भगवान की सेवा की तरफ चलनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, वो हर ली जाती है। जितना अधिक व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होता है तो उसकी भक्ति करने की बुद्धि खत्म हो जाती है। ये दोनों एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। जितना भगवान की भक्ति की बुद्धि होगी उतना ही ये भोग करने की बुद्धि खत्म हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी हमारा मन, और जितना भोग करने की तरफ जाएंगे तो उतना भगवान की सेवा करने की निस्वार्थ भाव से, जिसको हम भक्ति कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। दोनों एंटागोनिस्टिक है। तो जिनका भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन आसक्त है, उनकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है, और इसीलिए कभी भी उनके हृदय में भगवान की भक्ति करने का संकल्प दृढ़ नहीं होता है, वो कभी भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकते। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते, उनकी बुद्धि हमेशा इस देवता की पूजा कर लेता हूँ अभी, उससे ये मिल जाएगा, नहीं उससे नहीं मिला चलो दूसरे देवता की पूजा कर लेता हूँ, अभी कुछ ये कर लेता हूँ, ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं वो लोग। हाँ, तो वो कभी भक्ति में उनकी श्रद्धा निष्ठ नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं जितना आधुनिक समाज में अधिक से अधिक लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के लिए, उतना ही लोगों का भगवान को समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है, शक्ति और इंटरेस्ट। लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान को जानने का। तो ये प्रिंसिपल है बताया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो जितना भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होगा उतना ही उसको भगवान को समझने में और उनकी सेवा करने में उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए आज के जो यूथ हैं बचपन से उन्होंने भोग और ऐश्वर्य के बारे में उनको प्रोत्साहन दिया जाता है सबको। हमारा समाज जो है आज हमें केवल भोग और ऐश्वर्य का ही प्रोत्साहन देता है। बेटे खूब बड़े बनना है, खूब पैसा कमाना है, बस यही करना है। और दुर्भाग्य से अभी क्या है, अभी तो वो देवताओं की पूजा करके ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना है अपने बलबूते पर प्राप्त करना है। पढ़ाई करो तो वो तो अभी कर्मकांड भी नहीं रह गए एक्चुअली, वो तो अभी कर्म देव देवताओं अरे देवता कुछ नहीं है, हम तो अपने आप कर लेंगे सब, तो वो विकर्म हो गया, वो तो क्या और भी ग्रहित हो गया। लेकिन ओवरऑल भोग ऐश्वर्य यही इसी का बोलबाला है। और इसीलिए भक्ति में किसी की रुचि नहीं है और किसी की समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए इतने हम कॉलेज में जाते हैं, इतने स्टूडेंट्स को हम लोग बताते हैं, लेकिन बहुत कम हैं जिनको इसमें कुछ रुचि हो पाती है। करेक्ट, आप क्या रहे सिटी बैच में से आप कितने कम लोग हैं जो इंटरेस्ट हो, दो तीन करेक्ट एक बैच में से। सो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये भोग ऐश्वर्य में आ सकते हैं वो, इसलिए उनको ऐसा प्रोत्साहन दिया गया है। तो इसलिए सार क्या है, एसेंस, तो हमें भोग ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होना है। जितना केवल शरीर के लिए आवश्यक है उतने में संतुष्ट होना है, तो फिर हम भक्ति कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल इंद्रिय भोग छोड़ दें कंप्लीटली, वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा भी शरीर है, हम शरीर पर आश्रित हैं, तो शरीर को निर्वाह करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, कुछ बेसिक कुछ चाहिए, सो दैट इज ओके। लेकिन आसक्त होना मतलब जीवन उसी के लिए बना है ये सोचना, जीवन का उद्देश्य ही खाना पीना मौज करना है, वो भक्ति को नाश करता है। लेकिन जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना के लिए प्रयास करना, दैट इज फेवरेबल, वो भक्ति के लिए अनुकूल है। फिर आगे भगवान कहते हैं 45वें श्लोक में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। तो इसलिए जो वेद जो है उसमें ज्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो कर्मकांडीय स्तर पे हैं, उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इसी कैटेगरी के हैं जो तैयार नहीं है, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, वो लोग तो बस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। तो इसलिए ज्यादातर शास्त्रों की इंस्ट्रक्शंस उसी से संबंधित है, ज्यादातर पुराण है, शास्त्रों में आप देखिए जो वेद है, वेदों में अलग अलग जो भाग हैं वेदों के, तो उसमें है जो ब्राह्मण एक भाग है वेदों का, संहिता है, उसमें सब देवी देवताओं की पूजा उपासना स्तुति करने को ही बताया गया है, वो सब कर्मकांड भाग है। फिर एक चौथा भाग है उपनिषद, उसमें तत्व ज्ञान दिया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे भक्ति क्या है, परम सत्य को प्राप्त करना, मुक्ति लिबरेशन, उन लोगों के लिए जो अभी कर्मकांड से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो मुक्ति के प्रति कोई उत्साह नहीं है, हमें मुक्त होना है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, इसमें कोई उत्साह नहीं है, उन्होंने कोई सोचते भी नहीं है। कभी आपके सोचिए, आपने कभी सोचा है जीवन का लक्ष्य? तो उनका आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन का लक्ष्य क्या होता है, जीवन का लक्ष्य हम तो उससे बस सब कुछ कर रहे हैं, लक्ष्य ये क्या चीज है, लक्ष्य उनको ये दिमाग में भी नहीं आता है कि ऐसे भी कुछ हो सकता है कि हमें कुछ परमार्थ इस सामान्य जो आसपास चल रहा है केवल खाना पीना सोना मर जाना, इसके ऊपर भी कुछ सोच सकते हैं, मरना क्यों पड़े, ये जन्म मृत्यु का चक्र क्यों, इससे हम बंधन से कैसे मुक्त हों, ये विचार भी उनको नहीं आता है, क्योंकि वो जानवर की तरह से उनकी चेतना है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्न जैसे जानवर होते हैं, उनका भी यही काम होता है, आहार निद्रा भय में चार चीजों में वो लगे रहते हैं, उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं। तो जो मनुष्य उसी प्रकार की चेतना के हैं उनका भी यही हाल होता है, तो कभी ये भौतिक जगत से मुक्त होना है, हमें यहाँ से निकलना है, क्या है अल्टीमेटली इज यूजलेस पॉइंटलेस। आप विचार करके देखो, अगर हमारे अंदर विचार करने की शक्ति है तो विवेक बुद्धि है तो आप सोचिए, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, मतलब कष्ट लेता है, पैसा कमाता है, पैसा रहता है तो भी वो हमेशा परेशान रहता है, पैसों को बचा कैसे रखना है, टैक्स कैसे बचाना है, चोरों से कैसे बचाना है ना? और फिर वो बहुत मेहनत करता है और बच्चे पत्नी वो सब पैसा खर्च करते हैं, वो मेहनत करता है और परिवार वाले उसको खर्च करते हैं ना? और एक दिन अचानक वो चला जाता है छोड़। तो अगर आप थोड़ा सा विवेक बुद्धि सोचो तो क्या ये यूजलेस नहीं, अंत में खत्म हो जाएगा ये सब, तो फिर किस लिए वो कर रहे थे? अंत में सब वो एक ही बरियल प्लेस में जाएंगे, शमशान, एक ही स्थान है सबके लिए। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो भी वही जाएगा, कोई अमीर है तो भी वही जाएगा, गरीब है तो भी वही जाएगा, लास्ट में वो बॉडी खत्म कर दी जाएगी, जला के राख कर दी जाएगी। लेकिन हम पूरा जिंदगी उसके लिए करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं ऐसी चीज को पाने के लिए जो अंत में एक दिन हमसे छीन ली जाएगी। Then what's the use of doing that? हर चीज आप देखो किसका यूज क्या है, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं जिसमें जो भगवान की सेवा के लिए, जिससे कि नित्य जीवन हमारा जो प्राप्त हो उसके लिए अगर कार्य नहीं है तो एवरीथिंग इज टेम्पररी। सो करो ना करो से क्या फर्क पड़ता है, जो चीज टेम्पररी है उसे करो कि ना करो क्या फर्क पड़ता है। किसी ने घर नहीं बनाया, ऐसे गरीबी में रहा, सड़क पर रहा, मर गया। मरने के बाद अमीर और गरीब में अंतर रहता है, एट द पॉइंट ऑफ डेथ व्हाट डिफरेंस विल बी लेफ्ट बिटवीन अ रिच एंड अ पुअर? नो डिफरेंस। मेनी वेज रिच इज सफरिंग मोर देन पुअर, रिच मैन हैज सो मच ऑफ एंग्जाइटी, करेक्ट? रिच मैन को उसका खाना भी हजम नहीं होता है, पूरा आदमी को मेहनत करता है, खूब अच्छे से भूख लगती है, कई बार लोग जो बहुत अमीर हैं उनकी इतनी टेंशन होती है, उनको बिजनेस इतना टेंशन, तो कोई लेबर है, काम किया, काम खत्म हुआ, खाना बनाया पत्नी ने, आराम से बैठे हैं बच्चे का बात कर, तो लोग इनका जीवन अच्छा है हमसे, इनके पास टाइम है बच्चों के साथ बैठ के बात करने का। लेकिन लोग जो है पैसा कमाने में इतने बिजी हैं, हमें बच्चों के लिए कमाना है और बच्चों के साथ बैठने का उनको टाइम ही नहीं, सो बिजी। सो व्हाट इज द यूज? अगर आप ऐसे एनालाइज करो इस जगत को तो इट्स पॉइंटलेस ऑल दिस एंडेवर्स। तो अगर इस पूरे जगत को हम लोग समझे नहीं कि ये सब हमारी एक्टिविटीज अगर भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान की तरफ हम नहीं ले जा रही है जो हमारा नित्य जीवन है, तो बाकी इसका तो कोई यूज ही नहीं है, इट्स यूजलेस। तो वो है विवेक, उसे कहते हैं ज्ञान, उसे कहते हैं बुद्धि। तो वैदिक संस्कृति में बचपन से अनावश्यक इंद्रिय भोग नहीं देना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर ये बुद्धि काम करनी शुरू हो, विवेक जगे। लेकिन आज क्या है, आज बच्चों को स्टार्टिंग से ही बहुत इंद्रिय भोग, है ना, एसी क्लासरूम्स, एसी हॉस्टल्स, माता पिता सोचते हैं हम बच्चों का बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बच्चों को जो उनकी इच्छाएं सब पूरी कर रहे हैं, हम बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, बच्चे जो है भोग ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते हैं और उसकी वजह से जानवर जैसे बन जाते हैं, देन दे कैन नेवर अंडरस्टैंड दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। मनुष्य जन्म हुआ तो इनके अंदर एक्चुअली वो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है सबके लिए, सबके अंदर ये संभावना है, शक्ति है समझने की भगवान। लेकिन ये समाज जो हमारा है आज, वो बचपन से ये ज्ञान देने की जगह उनको भोग ऐश्वर्य में आसक्त कराने का ज्ञान देता है, वही शिक्षा देता है, उससे उनका जो चांस था इस जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होने का वो खत्म होता है। तो इसलिए ये जो आधुनिक समाज विशेष रूप से है ये बहुत ही क्रिमिनल है, वेरी क्रिमिनल, बहुत क्रूअल है, ये अलाउ नहीं करता है लोगों को मुक्ति प्राप्त करने की, सबको इसी जगत में ही बांध के रखने का ही पूरा उपाय है। अगर बचपन से ये शिक्षाएं दी जाएं तो बहुत लोग इसको समझेंगे। ऐसे पहले हम देखते हैं जब, जैसे जयपुर है, जयपुर में राजा जो थे वो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, तो बहुत बहुत लोग भगवान की भक्ति को स्वीकार करते थे। आज भी जयपुर में मंदिर में बहुत लोग हर सुबह मंगल आरती भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसी पूरी ट्रेडिशन सेट हुई, क्योंकि राजा ऐसा था। आज के राजा कैसे हैं, सब भौतिकता में ही एंकरेज करते हैं, तो इसलिए सब लोग उसी प्रकार से चल जाते हैं, क्योंकि लोग तो जनरली जहां उनको ले जाएंगे वैसे ही मुड़ जाएंगे। ज्यादातर लोग भेड़ चाल वाले होते हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नेता है उसे भगवान के आदेश के अनुसार सबको शासन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो बहुत दुर्भाग्य सबका होता है। सो व्हाट टू डू, तो अभी राजा तो ऐसा है नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो सब भक्ति तो उनके दिमाग में कहीं है ही नहीं, वो तो केवल मटेरियल एडवांसमेंट एक ही चीज़ उनको आती है, और वो सोचते हैं मटेरियल एडवांसमेंट करके हम लोगों को सुखी बना रहे हैं। मटेरियल एडवांसमेंट से कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है, वो दुखी होता है। जितना अधिक हम मटेरियल एडवांस होने के प्रयास करेंगे उतना ही अधिक हम भौतिक दृष्टि से भी दुखी होंगे, और अंततः भगवान से दूर जाएंगे तो डेफिनेटली दुखी होंगे ही, है ना। तो अभी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, प्रचार करें। तो उसमें से जो लोग भी तैयार होंगे, जो लोग भी थोड़ा विवेकपूर्ण हैं, जो सोचते हैं, तो वो विचार करेंगे, हाँ ये बात तो सही है, हम ये सब क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा। तो ऐसे लोग फिर भगवान के शरण में आएंगे, और धीरे धीरे इस प्रकार से भक्ति का प्रचार होगा। जो लोग भी आएंगे उनका आप देखिए, जो लोग भी भक्ति को स्वीकार करते हैं वो फिर कंपैरिजन जब करते हैं अपने पूर्व जीवन से, तो समझ पाते हैं कि हम किस रास्ते में जा रहे थे और अभी हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमें अपने भक्ति को सुदृढ़ करना है, और जितना हो सके सबको साथ में लेके चलना है। दैट शुड बी अवर गोल। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
जैसे एक पर्सन है गुरुजी, जो ये जानता है कि कृष्णा भगवान है, पर वो उसके साथ मतलब उसको नॉलेज है कि जैसे जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव है और कृष्णा भगवान है, और वो कोई डिजायर से पूजा उनकी आर पूजा नहीं करता, पर वो उनकी एक साथ पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान है और उनके साथ में शिव जी की भी वो रखी हुई है या फिर और भी देखते, लेकिन उसको पता है कि मैं कोई डिजायर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान की भक्ति के लिए कर रहा हूँ, तो क्या वो मतलब गलत कर रहा है या सही कर रहा
है? जो भगवान के भक्ति में जो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, तो वो शिव जी या कोई भी देव देवता हैं तो उनसे वो भगवान की भक्ति ही मांगेंगे। लेकिन जब तक हम ऐसे अतिशुद्ध स्तर पर नहीं, जब तक हमारे हृदय के अंदर भौतिक वासनाएं रहती हैं, तब तक हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भले ही हम सोचें कि हम तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी आसक्ति तो बनी हुई है उनसे। तो भक्ति कैसे होती है? भगवान जैसा चाहते हैं वैसे भक्ति होती है। भक्ति मतलब है भगवान को प्रसन्न करना। तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें किससे जानना चाहिए? भगवान से जानना चाहिए, अपने मन से तो हम नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं भक्ति अनन्य भक्ति, माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो आ, अलग अलग देवी देवताओं को हम आदर सम्मान देते हैं कि वो कृष्ण के पार्षद हैं, कृष्ण के अंश हैं इस भौतिक जगत में, इस प्रकार से हम उनको सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको सम्मान नहीं देते, लेकिन हमारा जो पूजा उपासना है वो क्या है, हमारी शरणागति कहाँ है उसके लिए है। वो आदर सम्मान केवल देने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारा प्रेम, हमारा प्रेम तो कृष्ण के साथ ही होगा, है ना। अन्य देव देवतागण ऑफिसर्स हैं, उनके सहायक हैं, उनके सेवक हैं, तो उनको हम सम्मान देंगे, लेकिन हमारा जो प्रेम संबंध है वो तो कृष्ण के साथ ही। तो जो हमारा आल्टर है जहाँ हम पूजा करते हैं, तो उसमें हम एकाग्रचित होकर कृष्ण की सेवा करें। और अगर हम कहीं कोई शिव मंदिर है, कहीं वहां से गुजर रहे हैं, तो हम शिव जी को आदर सम्मान दें। लेकिन हम अगर वहीं पर सभी देवी देवता रखते हैं, तो वो क्या, हमारा जो डिटर्मिनेशन है कि केवल कृष्ण को ही हमें संतुष्ट करना है, उन्हीं को शरणागत होना है, तो उसमें बाधा आती है। अगर कभी कोई समस्या आई है बहुत बड़ी और कुछ पूरी नहीं हो रही है, तो फिर साथ में शिव जी भी बैठे हैं, बोलेंगे तो शिव जी भगवान तो सुन नहीं रहे, कृष्ण अभी आप ही सुन लो, तो वो जो हमारी शरणागति है उसकी भावना जो है वो डगमगा रहे हैं। इसलिए एक हम जानते हैं कि कृष्ण की सेवा करने से बाकी सभी देवता प्रसन्न हैं, तो फिर उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी टेंडेंसीज जो है ना वो इंडिपेंडेंट उनको सोचने की है, इसलिए समस्या है। इसलिए हमें जो विधि है वो बताई गई है, हमें केवल कृष्ण के पद। और देवी देवतागण जो हैं, अभी शिव जी जो हैं वो महान वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में जो शिव जी की उपासना होती है वो तो भौतिक देवी देवता की दृष्टि से ही होती है। एक भगवान के वो महान भक्त हैं इस दृष्टि से नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन हनुमान जी की पूजा किस उद्देश्य से होती है जगत में, संकट विमोचन, करेक्ट। इस उद्देश्य से नहीं होती है कि भगवान राम की जिस तरह से वो शुद्ध भक्त है वैसे हम भी शुद्ध भक्त बने, उस उद्देश्य से नहीं होती। ऐसे शिव जी की भक्ति भी उस उद्देश्य से नहीं होती है जगत में। अभी हमें अगर शिव जी की उपासना करनी है तो हम ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे, एसोसिएशन में आएंगे, तो फिर उन्हीं की चेतना हमारे को प्रभावित करेगी।
लेकिन जो भी अगर किसी को नॉलेज होगा इस बारे में कि वो वैष्णव है, महान वैष्णव है और वो भी भगवान के भक्त हैं, तो फिर अगर उसको नॉलेज है कि तो फिर
यस नॉलेज है, लेकिन हृदय के अंदर अभी बीज भी हैं भौतिक,
जब तक उस लेवल पर नहीं आ जाते भक्ति के, जब
इसलिए एक और शिवजी तो शिवजी क्या कहते हैं, शिवजी जिस प्रकार से चाहते हैं, भगवान जिस प्रकार चाहते हैं, वैसे हम भगवान की सेवा करें। शिवजी कहते हैं आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना पर, सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना पर, और उससे भी उनके भक्त की आराधना है। तो शिवजी अत्यंत प्रसन्न है यदि हम भगवान कृष्ण के अनन्य रूप से भक्ति सेवा कर रहे हैं। और शिवजी जो हमें पाठ दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं भागवतम में, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, तो शिवजी का इस प्रकार से हम उनका सम्मान कर ही रहे हैं, तो हमें जो है शिवजी जब इस भौतिक जगत में हैं तो उनके अलग अलग कार्य होते हैं। शिवजी का एक कार्य है भूत प्रेत इत्यादि तमोगुण के लोग हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है, वो शिवजी का एक और कार्य है इस जगत में। तो इसलिए वो शिवजी की जो उपासना हम करेंगे, अभी किस प्रकार से करेंगे, उपासना की एक विधि होगी ना, एक भगवान कृष्ण की उपासना की विधि हम यहां से समझ रहे हैं। शिव जी की उपासना की विधि जो है तो इस भौतिक जगत में जो प्रचलित विधि है वो तो वही भौतिक इच्छाओं वाली विधि है, केवल फोटो रखने से काम नहीं चलता ना, उनकी एक प्रार्थना की एक कुछ स्तुति करनी है, कुछ उनसे बोलना पड़ेगा, तो वो सब विधियां वो सब वही है जो भौतिक जगत में भौतिक लाभ से लोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर वो डेंजर है कि हम वही चीजें वही मन में आएगा, वही भौतिक कामना किससे करेंगे, तो लेकिन उसकी जगह जो जो आचार्य जिस प्रकार से भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमें तरीका बता रहे हैं, तो उस तरह से हम करेंगे तो सेफ है। तो जो गुरु होते हैं वो सभी देवताओं का वास उसमें होता है, सर्वदेव मयो गुरु, ही रिप्रेजेंट्स ऑल द डेमिगॉड एंड ही इज अ प्योर डिवोटी, सो ही इज डायरेक्टली टीचिंग अस हाउ टू गो टू कृष्ण। तो फिर उनकी उपासना करने से उसमें कमी क्या रह गई कि हमें अलग से शिव जी की उपासना करनी है? तो
उसने शायद नरोत कहीं लेक्चर में सुना नरोत्तम दास ठाकुर है, वो कहते हैं कि कर्मकांड इज आल्सो सिंफुल।
कर्मकांड सिंफुल नहीं है, लेकिन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म से देखे हैं भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा हर चीज सिंफुल है एक दृष्टि से, तो क्योंकि वो जो वो कुछ भी वो जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, सो उस दृष्टि से सिंफुल है। लेकिन सामान्य जो विचार है सिन और पुण्य, तो वो सिंफुल है, तो पुण्य क्या है? कर्मकांड तो पुण्य करने के लिए तो कर्मकांड है, अगर वो उस दृष्टि से सिंफुल है तो फिर पुण्य क्या है? सो कर्मकांड मतलब पुण्य कमाना, लेकिन हाईएस्ट प्लेटफॉर्म से जो शुद्ध भक्ति है उस दृष्टि से वो निकृष्ट है, तो इस दृष्टि से वो पाप है। इस दृष्टि से जो भी भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं उसके अलावा सब कुछ ही पाप, इन द सेंस वो जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इस दृष्टि से पाप है। पर जब हम पाप कहते हैं तो पाप मतलब वो चीज जो शास्त्रों के विधि विधान के विरुद्ध होता है, तो कर्मकांड शास्त्र के अंतर्गत है, शास्त्र में दिया गया, इसलिए वो उस दृष्टि से पाप नहीं। शतोपाद की जाए।